अपने बच्चों को हम तालीम दिलाते हैं कि वो नेक तासुरात को हासिल करें। नेक तासुरात का मफहूम लोग समझ लेते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी, घर, मकान और तरक्की के मसाइल को हासिल कर लें। माबूद के जानिब किसी का ख्याल ही नहीं है। किसी किसी के पास इतना कुछ है कि माबूद को याद करने की जरूरत ही महसूस नहीं करता, लेकिन ये सब कुछ फानी ही तो है, तो ना चाहते हुए भी ये सारी दौलत यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसी हालत में माबूद की पहचान ही वाहिद सहारा है, जिसे अता कर रहा है यथार्थ गीता का ये सीडी नशरिया।
ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अतः
दशमोध्याय, दसवां बाब। गुज़िश्ता बाब में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने पोशीदा शहंशाह उलूम की अक्कासी की, जो यकीनी तौर पर फलाह अता करता है। दसवें बाब में उनका कौल है कि बाजुए अजीम अर्जुन, मेरे आला राज से मुजयन कौल को फिर भी सुन। यहां उसी बात को दूसरी बार कहने की जरूरत क्या है? दर हकीकत रियाजत कश को आखिरी अंजाम हासिल करने तक अंदेशा बना रहता है। जैसे जैसे वो हकीकी शक्ल में ढलता जाता है, दुनियावी पर्दे बारीक होते जाते हैं, नए नए मंजर आते हैं। अजीम इंसान ही उन चीजों से बाखबर रहते हैं। वो खुद नहीं जानता अगर वो रहनुमाई करना बंद कर दें तो रियाजत कश हकीकी शक्ल को हासिल करने से महरूम रह जाएगा। जब तक वो हकीकी शक्ल से दूर है, तब तक साबित है कि दुनिया का कोई ना कोई पर्दा बना है, फिसलने और लड़खड़ाने की गुंजाइश बनी रहती है। अर्जुन पनाह शुदा शागिर्द है। उसने कहा था, शिष्यस्तेहम शाधी माम त्वाम प्रपन्नम। बंदा नवाज, मैं आपका शागिर्द हूं, आपकी पनाह में हूं, मुझे संभालिए। लिहाजा उसकी भलाई की ख्वाहिश से जोग के मालिक श्री कृष्ण ने फिर बयान किया, श्री भगवान उवाचा।
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।
बाजुए अजीम अर्जुन, मेरे आला असर वाले कौल को फिर सुन, जिसे मैं तुझ जैसे बेहद मोहब्बत रखने वाले की भलाई की गरज से कहूंगा।
न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः।
अर्जुन, मेरी पैदाइश के बारे में ना देवता लोग जानते हैं और ना वली हजरात ही जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरी वो पैदाइश और अमल मावराई है, उन आम नजरों से नहीं देखी जा सकती। लिहाजा मेरे उस जाहिर होने को देवता और वली के मर्तबे तक पहुंचे हुए लोग भी नहीं जानते। मैं हर तरह से देवताओं और वलियों की बुनियादी वजह हूं।
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।
जो मुझ जिंदगी और मौत से आरी, इब्तिदा और इंतहा से मुबर्रा, तमाम अवालिम के अजीम माबूद को बदीही दीदार के साथ जान लेता है, वो इंसान फना पजीर इंसानों में इल्मदा है, यानी पैदाइश से मुबर्रा, अबदी और सारे अवालिम के अजीम मालिक को अच्छी तरह जानना ही इल्म है। ऐसा जानने वाला तमाम गुनाहों से नजात पा जाता है, आवागोन से नजात पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दस्तियाबी भी मेरा ही फैज है।
बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भवो भावो भयम् चाभयमेव च।
अर्जुन, अक्ले सलीम, बदी ही दीदार के साथ जानकारी, मकसद में इरफान के साथ रुझानात, मुआफी, दायमी हकीकत, नफ्स खुशी, मन पर काबू, बातिनी खुशी, राह गौर फिक्र की मुसीबतें, रूह मुतलक की बेदारी, हकीकी शक्ल के हुसूल के दौर में सारा कुछ की तहलील, माबूद के मुतालिक जवाबदेही का खौफ और दुनियावी खौफ से आजादी, और
अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यश भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथक विधा।
अदम तशद्दुद यानी अहिंसा, यानी अपनी रूह को जहन्नम में ना पहुंचाने का बर्ताव, मुसावात जिसमें गैर बराबरी ना हो, सब्र, रियाजत, मन के साथ हवास को मकसूद के मुताबिक तपाना, सदका यानी मुकम्मल सुपुर्दगी, राह माबूद में इज्जत और जिल्लत का बर्दाश्त करना, इस तरह मजकूरा वाला जानदारों के एहसासात मुझसे ही सादिर होते हैं। ये सारे एहसास रूहानी तरीके फिक्र के निशानात हैं, इनकी कमी ही दुनियावी दौलत है।
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा।
हफ्त औरंग यानी सप्तर्षि यानी बतसलसुल जोग की सात बुनियादें, शुभेच्छा यानी नेक ख्वाहिश, सुविचारणा यानी अच्छी सोच, तनु मानसा यानी जिसमें मन का लगाव ना होना, सत्वापत्ति यानी सच्चाई से रगबत, असंसक्ति यानी ताल्लुक से कतई ताल्लुक, पदार्थ भावना यानी माद्यात का ख्याल ना होना, और तुर्यगा यानी मन पर काबू और उनके मुताबिक बातिन के चार सिफात यानी मन, अक्ल, तबीयत और गुरूर। उसके मुताबिक मन जिसके अंदर मेरी अकीदत है, ये सब मेरे ही इरादे से, मेरे ही हुसूल के अज़्म से और जो मेरी ही तरगीब से सादिर होते हैं, दोनों एक दूसरे के तकमिला हैं, पैदा होते हैं इस दुनिया में, ये यानी मुकम्मल रूहानी दौलत उन्हीं की रियाया है। کیونکہ ساتوں تحقیقات کی تحریک میں روحانی دولت ہی ہے، دوسرا کچھ نہیں۔
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।
जो इंसान जोग की और मेरी मजकूरा बाला शौकतों को بدیہی دیدار کے ساتھ جانتا ہے، وہ ساکن تصوراتی جوک کے ذریعے مجھ میں یکسانیت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جس طرح ہوا سے خالی جگہ پر رکھے ہوئے چراغ کی لو سیدھی جاتی ہے، لرزش نہیں ہوتی، جوگی کی قابو یافتہ طبیعت کی یہی تعریف ہے۔ پیش کردہ شلوک میں اوی کمپین یعنی غیر متحرک لفظ اسی مفہوم کی جانب اشارہ کرتا ہے۔
اہم سروسیا پربھو متہ سروم پرورتتے اتی متوا بھجنتے مام بدھا بھاو سمنویتا۔
میں ساری دنیا کی تخلیق کی وجہ ہوں، مجھ سے ہی ساری دنیا کوشاں ہے، اس حقیقت کو مان کر عقیدت اور خلوص سے مزین دانشمند لوگ مسلسل میری یاد کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جوگی کے ذریعے میری رضا کے مطابق جو رجحان ہوتے ہیں اسے میں ہی کیا کرتا ہوں، وہ میرا ہی رحم و کرم ہے۔ یعنی کیسے ہے، اسے پہلے جگہ جگہ پر بتایا جا چکا ہے، وہ مسلسل کس طرح یاد کرتے ہیں اس پر فرماتے ہیں۔
مچتا مدگت پرانا بودھینت پرسپرم کتھینتش مام نتیم تشنتی چرمنتی چ۔
بلا شرکت غیر مجھ میں ہی مسلسل طبیعت کو لگانے والے، مجھ میں ہی جان لگانے والے، ہمیشہ آپس میں میرے طور طریقوں کا علم و احساس حاصل کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہوئے ہی سکون پاتے ہیں اور مسلسل میرے تصور میں لگے رہتے ہیں۔
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते۔
مسلسل میرے تصور میں لگے ہوئے اور با محبت یاد کرنے والے ان بندوں کو وہ عقلی جوگ یعنی جوگ سے نسبت دلانے والی عقل عطا کرتا ہوں جس سے وہ مجھے حاصل کرتے ہیں، یعنی جوگ کی بیداری معبود کے رحم و کرم کا نتیجہ ہے۔ وہ غیر مرئی فرد عظیم انسان جوگ میں داخلہ دلانے والی سمجھ کیسے عطا کرتا ہے؟
अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता۔
उनके ऊपर पूरी मेहरबानी अता करने के लिए मैं इनकी रूह से यकसा खड़ा होकर रथवान बनकर जहालत से पैदा होने वाले तारीकी को علم کے چراغ سے روشن کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ در حقیقت کسی حال آشنا یعنی مستقل مزاج جوگی کے ذریعے جب تک وہ معبود آپ کی روح سے ہی بیدار ہو کر ہر لمحہ رہنمائی نہیں کرتا، रोकथाम नहीं करता, इस दुनियावी चक्कर से आजाद करते हुए खुद आगे नहीं बढ़ाता, तब तक हकीकी याद की असल में शुरुआत ही नहीं होती। वैसे तो माबूद का हर गोशे से इजहार होने लगता है, लेकिन शुरू में वो पहुंचे हुए अजीम इंसान के जरिए ही जाहिर होते हैं। अगर ऐसा अजीम इंसान आपको हासिल नहीं है तो वह आपसे साफ तौर से मुखातिब नहीं होंगे। माबूद, मुर्शिद, ख्वाह रूहे मतलक का रथबान होना एक ही बात है। रियाजत कश के रूह से बेदारी के बाद उनके एहकामात चार तरह से मिलते हैं। मुजस्सम सांस से वाबस्ता एहसास होता है, आप गौर फिक्र में बैठे हैं, कब आपका मन लगने वाला है, किस हद तक लग गया है, कब मन भागना चाहता है और कब भाग गया, इसको हर मिनट सेकंड पर माबूद जिस्म के हरकत से इशारा करते हैं। आजा का फड़कना मुजस्सम सांस से वाबस्ता एहसास है, जो एक लम्हे में दो चार जगहों पर एक साथ आता है और आपके लापरवाह होने पर मिनट मिनट पर आने लगेगा। यह इशारा तभी होता है जब मतलूब की शक्ल को आप लाशरीक ख्याल से पकड़ें, वरना आम जानदारों में तासुरात के टकराव से जिस्मानी फड़कन होती रहती है, जिनका माबूद से मतलब रखने वालों से कोई सरोकार नहीं है। दूसरा एहसास ख्वाबीदा सांस से वाबस्ता होता है। आम इंसान अपने ख्वाहिशात से मुतालिक ख्वाब देखता है, लेकिन जब आप माबूद को पकड़ लेंगे तो यह मौजूद ख्वाब भी अहकाम में बदल जाता है। जोगी ख्वाब नहीं देखता, होने वाले वाकयात को देखता है। मज़कूरा बाला दोनों एहसासात इब्तदाई हैं। किसी मुबस्सरे अजीम इंसान की कुर्बत से, मन में उनके लिए महज अकीदत रखने से, उनकी मामूली खिदमत से भी बेदार हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों में से भी बारीक बाकी दो एहसासात अमली हैं, जिन्हें अमली राह पर चलकर ही देखा जा सकता है। तीसरा एहसास गहरी नींद वाली सांस से वाबस्ता होता है। दुनिया में सब सोते ही तो हैं, दुनियावी फरेब की रात में सभी बेहोश पड़े हैं, शबो रोज से जो कुछ करते हैं ख्वाब ही तो है। यहां गहरी नींद का खालिस माना है जब माबूद की फिक्र की ऐसी डोर लग जाए कि सूरत यानी ख्याल बिल्कुल साकिन हो जाए, जिस्म जागता रहे और मन सो जाए। ऐसी हालत में वो माबूद फिर अपना एक इशारा देंगे, जोग की हालत के मुताबिक एक मंजर नजर आता है जो सही रास्ता अता करता है, माजी और मुस्तकबिल से तारुफ कराता है। काबिले एहतराम महाराज जी कहा करते थे कि डॉक्टर जैसे बेहोशी की दवा देकर माकूल इलाज करके होश में लाता है, ऐसे ही माबूद बाखबर कर देते हैं। चौथा और आखिरी एहसास मुसावी सांस से वाबस्ता है, जिसमें आपने लव यानी सूरत लगाई थी, उस माबूद के साथ मुसावात हासिल हो गई। उसके बाद उठते बैठते चलते फिरते हर जगह से उसे एहसास होने लगता है। ये जोगी तीनों दौरों का जानकार होता है। ये एहसास तीनों दौरों से अलग गैर मरई की हालत वाले अजीम इंसान रूह से बेदार होकर ना समझी के जेरे असर पैदा होने वाली तारीकी को चिराग इल्म से खत्म करके अंजाम देते हैं। इस पर अर्जुन ने सवाल खड़ा किया। अर्जुन उवाच,
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुं आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे।
बंदा नवाज, आप आला माबूद, आला मकाम और आला कुद्दूस हैं, क्योंकि आपको सभी वली हजरात अबदी मावराई इंसान रब्बुल अरबाब दायमी और आलमगीर कहते हैं। आला इंसान आला मकाम का ही मुतरादिफ मावराई इंसान दायम वगैरह अल्फाज हैं। आरिफ मलकूत नारद असित देओल व्यास और खुद आप भी मुझसे वही कहते हैं, यानी पहले गुज़िश्ता दौर के वली हजरात कहते हैं, अब मौजूदा दौर में जिनकी कुर्बत हासिल है नारद देओल असित और व्यास का नाम लिया जो अर्जुन के हम असर थे। साले इंसानों की कुर्बत अर्जुन को हासिल थी, आप भी वही कहते हैं, लिहाजा।
सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा।
ऐ केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए नसीहत कर रहे हैं वो सब मैं सही मानता हूं। आपकी शख्सियत को ना देवता और ना दानव ही जानते हैं।
स्वयमेवात्मनात्मानम् वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते।
ऐ जानदारों को पैदा करने वाले जानदारों के मालिक, ऐ मालिकुल कुल, ऐ इंसानों में अजीम इंसान, खुद आप ही अपने को जानते हैं या जिसके बातिन में बेदार होकर आप जाहिर करा देते हैं वो जानता है, वो भी आपके जरिए आपकी जानकारी हुई इस वास्ते।
वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्यतिष्ठसि।
आप भी अपनी उन मावराई शौकतों को मुकम्मल तौर से जरा भी बाकी न रखकर बयान करने में कादिर हैं, जिन शौकतों के जरिए आप तमाम अवालिम को जारी व सारी करके मौजूद हैं।
कथम विद्यामहं योगिन स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया।
अय जोगी, यानी श्री कृष्ण एक जोगी थे, मैं किस तरह मुसलसल फिक्र करता हुआ आपका इल्म हासिल करूं, और ऐ बंदा परवर, मैं किन किन एहसासात के साथ आपको याद करूं।
विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्ते श्रृण्वतो नास्ति मे मृतम्।
ऐ बंदा नवाज, अपनी जोग की ताकत को और जोग की अजमत को फिर भी तफसील के साथ बतलाइए। मुख्तसर में तो इसी बात के शुरू में बताया ही है, फिर बताइए, क्योंकि लाफानी उनसुर को दिलाने वाली इन नसीहतों को सुनने से मुझे आसूदगी नहीं होती। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जब तक दाखिला नहीं मिल जाता तब तक इस लाफानी उनसुर को जानने की तिश्नगी बनी रहती है। दाखिला होने से पहले ही रास्ते में ही ये सोचकर कोई बैठ गया कि बहुत जान लिया तो उसने नहीं जाना, साबित है कि उसका रास्ता बंद होना चाहता है। लिहाजा रियाजत कश को तकमील तक भगवान के अहकाम को पकड़ते रहना चाहिए और उसे बर्ताव में ढालना चाहिए। अर्जुन के बयान किए गए तजस्सुस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण ने फरमाया, श्री भगवान वाचा।
हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे।
कौरव खानदान में अशरफ अर्जुन, अब मैं अपनी मावराई शौकतों को उनमें से खास शौकतों के बारे में तुझे बताऊंगा, क्योंकि मेरी शौकतों की वुसत की इंतहा नहीं है।
अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च।
अर्जुन, मैं सारे जानदारों के दिल में कायम सबकी रूह हूं और तमाम जानदारों की इब्तिदा वस्त और आखिर भी मैं ही हूं, यानी पैदाइश हयात और मौत भी मैं ही हूं।
आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि।
मैं अदिति के 12 औलाद में विष्णु और रोशनी में मुनव्वर सूरज हूं। हवा की किस्मों में मैं मरीचि नाम की हवा और सितारों में माहताब हूं।
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना।
वेदों में मैं सामवेद यानी मुकम्मल मुसावात दिलाने वाला नगमा हूं। देवताओं में मैं उनका शहंशाह इंद्र हूं और हवास में मन हूं, क्योंकि मन की बंदिश से ही मैं जाना जाता हूं, और जानदारों में उनकी हिस यानी चेतना हूं।
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्।
11 रुद्रों में मैं शंकर हूं। शंख जमा उर्ष शंकर यानी शंकाओं यानी शको शुभे से अलग की हालत में हूं। यक्ष और देवों में मैं दौलत का मालिक कुबेर हूं। 8 वसों में आग और चोटी वालों में सुमेरु यानी शुभून यानी नेक कयालात की मीजान मैं हूं। वही सबसे ऊंची चोटी है نہ کہ کوئی پہاڑی۔ در حقیقت یہ سب جوگ کی ریاضت کی علامتیں ہیں، جوگ سے متعلق الفاظ ہیں۔
پُرودھسان چ مُکھیم ماں ودھی پارتھ برہسپتیم سینانینامہم سکندہ سرسامسمی ساگرہ۔
پُر یعنی مقام کی حفاظت کرنے والے پُروہیتوں یعنی پیروں میں میں برہسپتی، مجھے ہی سمجھ، جس سے روحانی دولت کی تحریک ہوتی ہے، اور اے پارتھ سپہ سالاروں میں میں سوامی کارتکیہ ہوں۔ عمل یعنی کرم کا ایثار ہی کارتکیہ ہے، جس سے متحرک و ساکن کا خاتمہ قیامت اور بھگوان کا حصول ہوتا ہے۔ جھیلوں میں میں سمندر ہوں۔
مہرشیناں بھرگورہم گرامسمیکمکشرم یجناام جپیوسمی ستھاوراناں ہمالیہ۔
اولیاء میں میں بھرگو ہوں اور الفاظ میں ایک حرف اومکار ہوں، جو اس معبود کا مظہر ہے۔ سب طرح کے یجوں میں میں ورد کا یج ہوں۔ یج اعلی حیثیت دلانے والی عبادت کے طریق خاص کی عکاسی ہے، اس کا لب لباب ہے۔ یاد الہی اور نام کا ورد دو الفاظ سے پار ہو جانے پر، نام جب یج کے درجے میں آتا ہے تو آواز سے نہیں ورد کیا جاتا، نہ غور و فکر سے، حلق سے، بلکہ وہ سانس میں بیدار ہو جاتا ہے۔ صرف لو یعنی صورت کو سانس کے پاس لگا کر، من سے لگا کر لگاتار چلنا بھر پڑتا ہے۔ یج کے درجے والے نام کا اتار چڑھاؤ سانس پر منحصر ہے، یہ عملی ہے۔ اٹل رہنے والوں میں میں ہمالے ہوں، سرد مساوی اور اٹل واحد معبود ہے۔ جب قیامت یعنی پرلے ہوئی تب موری سے اول منو اسی چوٹی میں بند گئے۔ اٹل مساوی اور پرسکون معبود کی قیامت نہیں ہوئی، اس معبود کی پکڑ میں ہوں۔
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः।
सब दरख्तों में मैं अश्वस्थ यानी पीपल हूं। अश्वः کل تک بھی جس کے رہنے کا وعدہ نہیں کیا جا سکتا، ایسا اوردھو مولا مدھا شاکھم اشوستھتم، اوپر بھگوان ہے جس کی جڑ ہے، نیچے قدرت جس کی شاخیں ہیں۔ ایسی دنیا ہی ایک درخت ہے جسے پیپل کا نام دیا گیا ہے۔ پیپل کا عام درخت نہیں کہ اس کی عبادت کرنے لگے، اسی پر کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں، اور ملکوتی عارفوں میں میں نارد ہوں۔ ناد رندرہ س نارد، آواز کا چھید، آواز کی لطافت۔ روحانی دولت اتنی لطیف ہو گئی کہ لئے میں اٹھنے والی آواز یعنی ناد پکڑ میں آ جائے، ایسی بیداری میں ہوں۔ گندھرو یعنی دیوتاؤں کی گانے بجانے والی ایک ذات میں چتر رتھ ہوں، یعنی گائن یعنی فکر کرنے والے قصائل میں جب شکل ابھرنے لگے وہ خصوصی حالت میں ہوں۔ کاملوں میں میں کپل منی ہوں، یعنی کایا جسم ہی کپل ہے، इसमें जब लौ लग जाए उस खुदाई तहरीक की हालत मैं हूं।
उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्।
घोड़ों में मैं आबे हयात यानी अमृत के लिए मथे गए समंदर से पैदा होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा हूं। दुनिया में हर शय फानी है, रूह ही जावेद अबदी और लाफानी है। इस लाफानी शक्ल से जिसकी तहरीक है वो घोड़ा मैं हूं। घोड़ा रफ्तार की अलामत है। रूहानी उंसुर को कबूल करने में जब मन उधर रफ्तार पकड़ता है घोड़ा है, ऐसा रफ्तार मैं हूं। हाथियों में एरावत यानी इंद्र का सफेद रंग का हाथी नाम का हाथी मैं हूं। इंसानों में शाह मुझे ही समझ, दर हकीकत अजीम इंसान ही शाह है जिसके पास तंग दस्ती नहीं है।
आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः।
असलहा में मैं वज्र हूं, गायों में मैं कामधेनु हूं। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध की जगह मनचाहा पकवान मुहैया करती है। आरिफों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। दर हकीकत गौ हवास को कहते हैं। हवास को काबू में रखने की खूबी माबूत को काबू में रखने वालों में पाई जाती है, जिसके हवास माबूत के मुताबिक साकिन हो जाते हैं उसके लिए उसी के हवास कामधेनु बन जाते हैं। जो इच्छा करी हूं मनमाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। फिर तो उसके लिए कुछ भी कमयाब नहीं रहता। पैदाइश देने वालों में नए हालात को जाहिर करने वाला मैं हूं। प्रजनन पैदाइश, एक तो बच्चा बाहर पैदा किया जाता है, मुतहर्रिक व साकिन में रात और दिन पैदा ही होते हैं। चूहे चींटी रात और दिन बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा नहीं बल्कि एक हालत से दूसरी हालत इस तरह खसाइल का बदलाव होता है। उसी बदलाव की हकीकी शक्ल मैं हूं। सांपों में मैं वासुकी हूं।
अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्।
नागों यानी अफई में मैं अनंत यानी शेष नाग हूं। वैसे ये कोई वो सांप नहीं है जिसे आम तौर से लोग समझते हैं। गीता की हम असर किताब श्रीमद् भागवत में इसकी शक्ल का जिक्र है कि इस जमीन से 30,000 योजन यानी दूरी की माप, जो किसी मत से 1 कोस और किसी मत से 4 कोस व किसी के मत से 8 कोस की होती है, कि दूरी पर माबूद की ताकत है जिसे वैष्णवी ताकत कहते हैं, जिसके सर पर यह जमीन सरसों के दाने के मानिंद बिला वजन के टिकी है। उस जमाने में योजन का पैमाना चाहे जो रहा हो फिर भी ये काफी दूर है। दर हकीकत ये एक जाजिबे का बयान है। साइंसदान लोगों ने जिसे ईथर माना है, सैयारा मस्नुई सैयारा सभी उसी ताकत की बुनियाद पर टिके हैं। उस कला में सैयारों का कोई वजन भी नहीं है। वो ताकत सांप की कुंडली की मानिंद सभी सैयारों को लपेटे है। यही है वो अनंत जिसकी बुनियाद पर यह जमीन टिकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी खुदाई ताकत मैं हूं, पानी में रहने वाला, जानदारों में उनका राजा यानी वरुण हूं, और अजदाद में अर्यमा हूं। अदम तशद्दुद, सदाकत, चोरी ना करना, रहबानियत और हवस से मुबर्रा, पांच यम यानी वसीले हैं। उसके बर्ताव में आने वाली बुराइयों को खत्म करना अरह जिद है। उयूब की सरकूबी से अजदाद यानी गुज़िश्ता तासुरात आसुदा होते हैं, गुलू खलासी अता करते हैं। हुकूमत करने वालों में मैं यमराज हूं यानी मजकूरा बाला यमों वसीलों का नाजिम हूं।
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्, वैनतेयश्च पक्षिणां।
मैं दैत्यों, मैं प्रह्लाद हूं यानी प्रह्लाद मावरा के लिए खुशी, मोहब्बत ही प्रह्लाद है। दुनियावी दौलत से वाबस्ता रहते हुए माबूद की तरफ खिंचाव और तड़प शुरू होती है जिससे आला माबूद का दीदार होता है। ऐसी मोहब्बत की खुशी मैं हूं, शुमार करने वालों में मैं वक्त हूं। एक, दो, तीन, चार, ऐसी गिनती या लम्हा, घड़ी, दिन, पखवाड़ा, महीना वगैरह नहीं, बल्कि माबूद की फिक्र में लगा हुआ वक्त मैं हूं। यहां तक के जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाए, मैं हूं कि मुसलसल फिक्र में वक्त मैं हूं। जानवरों में मृगराज यानी शेर, जोगी भी मृग यानी जोग की शक्ल वाले जंगल में गमन करने वाला है, और परिंदों में गरुड़ हूं, इल्म ही गरुड़ है। जब खुदाई एहसास बेदार होने लगता है तब यही मन अपने माबूद की सवारी बन जाता है, और जब यही मन शक व शुबे से मुजयन है तब सर्प यानी अफई होता है, डसता रहता है, शक्लों यानी योनियों में फेंकता है। गरुड़ विष्णु की सवारी है जो इख्तदार सारी दुनिया में अणु की शक्ल में मुतहरिक है। इल्म से मुजयन मन उसे अपने में जज्ब कर लेता है, उसका हामिल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माबूद को कबूल करने वाला मन मैं हूं।
पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी।
तहारत मुहैया कराने वालों में मैं हवा हूं, मुसल्लह लोगों में मैं राम हूं। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स राम, जोगी हजरात किस में मन लगाते हैं? तजिर्बे में, माबूद मतलूबा की शक्ल में जो हिदायत देता है, जोगी उसमें मसरूफ रहते हैं। उस बेदारी का नाम राम है और वो बेदारी मैं हूं। मछलियों में मगरमच्छ यानी घड़ियाल, और नदियों में गंगा नदी मैं हूं।
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्।
अय अर्जुन, तखलीकात की इब्तिदा, इंतहा और वस्त मैं ही हूं। علوم میں تصوف کا علم میں ہوں، جو روح کا اختیار دلا دے وہ علم میں ہوں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ لو سے دنیا یعنی مایا کے اختیار میں ہیں، حسد و عداوت، دور، عمل، خصلت اور صفات سے آمادہ ہیں۔ ان کے اختیار سے نکال کر روح کے اختیار میں لے جانے والا علم میں ہوں، جسے علم میں تصوف کہتے ہیں۔ آپسی اختلافات میں ذکر الہی میں جو فیصلہ کن ہے، ایسی گفتگو میں ہوں۔ باقی کے فیصلے تو فیصلہ طلب ہوتے ہیں۔
اکشراناکاروسمی دوندو سامسکسیہ اہمیو اکشیہ کالو دھاتاہم وشوتو مکھ۔
میں حروف میں اکار، اومکار اور مرکب میں دوندو نام کا مرکب ہوں۔ لافانی دور میں ہوں۔ دور میں ہمیشہ رد و بدل ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ وقت جو لافانی جاوید ابدی روح مطلق میں داخلہ دلاتا ہے وہ حالت میں ہوں۔ عظیم الشان حقیقی شکل یعنی ہر جگہ جاری و ساری، سب کو سنبھالنے و پرورش کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔
मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधाधिति क्षमा।
मैं सबका खात्मा करने वाली मौत और आगे पैदा होने वालों की पैदाइश की वजह हूँ। औरतों में मैं शोहरत، طاقت، چرب زبانی یا داشت، سمجھ یعنی عقل، صبر اور معافی میں ہوں۔ جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق دعاوی مو پروشو لوکے شرکش چاکشر اے وچر، انسان دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، فانی اور لا فانی۔ تمام جاندار وغیرہ کی پیدائش اور خاتمہ کرنے والے یہ جسم فانی انسان ہیں۔ وہ نر، مادہ، مرد یا عورت کچھ بھی کہلائیں، شری کرشن کے الفاظ میں انسان ہی ہیں۔ دوسرا ہے لافانی انسان، جو اعلی درجے کی اٹل طبیعت کے ساکن ہونے کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راہ جوگ میں عورت اور مرد سبھی برابر کے حالات والے عظیم انسان ہوتے آئے ہیں، لیکن یہاں یادداشت کی طاقت، عقل وغیرہ عورتوں کے ہی خصوصیات بتائے گئے۔ کیا ان نیک صفات کی ضرورت مردوں کے لیے نہیں ہے؟ ایسا کوئی مرد ہے جو شریمان، شہرت مند، مقرر، ذہین، عقل مند اور صابر نہیں بننا چاہتا؟ ذہنی سطح پر کمزور لڑکوں میں انہی صفات کی ترقی کے لیے والدین ان کی تعلیم کا الگ سے انتظام کرتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں صرف عورتوں میں پائی جاتی ہیں، لہذا آپ غور کر کے دیکھیں کہ عورت کون ہے۔ در حقیقت آپ کے دل کی خصلت ہی عورت ہے، اس میں ان خوبیوں کی تحریک ہونی چاہیے۔ ان صفات کو قبول کرنا عورت خواہ مرد سب کے لیے مفید ہے جو مجھ سے ہوتے ہیں۔
برہت سام تتھا سامنا گایتری چھند سامہم मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः।
वेदों में काबिले नगमा सराई में मैं यानी बृहत साम یعنی عظیم سے مزین مساوات دلانے والا نغمہ ہوں، یعنی ایسی بیداری میں ہوں، یہ چھندوں میں گایتری برہ میں ہوں۔ گایتری کوئی دعا یعنی منتر نہیں ہے جسے پڑھنے سے نجات ملتی ہے، بلکہ خود سپردگی سے وابستہ ایک چھند ہے۔ تین بار متزلزل ہو جانے کے بعد عارف وشوامتر نے اپنے کو معبود کی پناہ میں سپرد کرتے ہوئے کہا، اوم بھور بھوسوہ تتسویتر ورینیم بھرگو دیوسیہ دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات، یعنی زمین و آسمان اور بہشت، یعنی بھو بھوہ اور سوہ، تینوں عوالم میں بشکل عنصر جلوگر دیوتا آپ ہی ممتاز ہیں۔ ہمیں ایسی عقل عطا کریں، ایسی ترغیب دیں کہ ہم مقصد کو حاصل کر لیں۔ یہ محض ایک گزارش ہے، ریاضت کش اپنی عقل سے حقیقی فیصلہ نہیں لے پاتا کہ میں کب صحیح ہوں کب غلط۔ اس کی یہ حوالے کردہ التجا میں ہوں جس میں یقینی طور سے بھلائی ہے، کیونکہ وہ میری پناہ میں آیا ہے۔ مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ اگہن میں ہوں، اور جس میں ہمیشہ بہار ہو ایسا موسم، دل کی ایسی حالت بھی میں ہی ہوں۔
یوتم چھلیتامسمی تیجس تیجسوینامہم جیوسمی ویوسایوسمی ستوم ستووتامہم۔
جلالی انسانوں کا جلال میں ہوں، قمار بازی میں فریب کرنے والوں کا فریب میں ہوں۔ تب تو اچھا ہے، جوا کھیلیں، اس میں مکر و فریب کریں، وہی معبود ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہی ایک جوا ہے، یہی دغاباز ہے۔ اس دنیا کے فساد سے نکلنے کے لیے نمائش چھوڑ کر پوشیدگی کے ساتھ چپکے چپکے یاد الہی میں لگ جانا ہی فریب ہے تو نہیں، لیکن بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ جڑ بھرت کی طرح مدمست، اندھے بہرے اور گونگے کی طرح دل سے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی باہر سے ایسے رہیں کہ جیسے ناواقف ہوں، سنتے ہوئے بھی نہ سنیں، دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں، چھپ کر ہی یاد الہی کا طریقہ ہے۔ تبھی ریاضت کش قدرت اور قدرت کے مالک کے جوئے میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ فتح کرنے والوں کی فتح میں ہوں، اور سوداگروں کا یقین یعنی جسے باب دو شلوک 41 میں کہے آئے ہیں، اس جوگ میں حتمی عمل ایک ہے، عقل ایک ہی ہے، سمت ایک ہی ہے، ایسی عملی عقل میں ہوں۔ صالح انسانوں کا جلال اور طاقت میں ہوں۔
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः।
वृष्णी खानदान में मैं वासुदेव यानी हर जगह मौजूद रहने वाला देवता हूं, पांडवों में मैं धनंजय यानी अर्जुन हूं, सवाब ही पांडव है, रूहानी दौलत ही कायम और दायमी दौलत है। सवाब की तरगीब से रूहानी दौलत को हासिल करने वाला धनंजय मैं हूं। जाहिदों में मैं व्यास हूं, उनसुरे आला को जाहिर करने की जिसमें सलाहियत है वो जाहिद मैं हूं। सुखनवरों में मैं اشنا یعنی اس میں داخلہ دلانے والا شاعر میں ہوں۔
دنڈو دمیتا مسمی نیتی رسمی جگیشتام मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्।
नफ्स कुछ लोगों में नफ्स खुशी की ताकत मैं हूं, फतेह के ख्वाहिशमंदों की अमली हिकमत मैं हूं, पोशीदा रखने लायक एहसासात में मैं खामोशी हूं, और इल्म वालों में बदी ही दीदार के साथ मिलने वाली समझदारी मुकम्मल इल्म मैं हूं।
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्।
अर्जुन, तमाम जानदारों की पैदाइश की वजह मैं ही हूं, क्योंकि मुतहर्रिक व साकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे खाली हो। मैं हर जगह जारी व सारी हूं, सब मेरे ही नूर से हैं।
नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया।
आला रियाजत कश अर्जुन, मेरी मावराय शौकतों की इंतहा नहीं, अपनी शौकतों का वसत का बयान तो मैंने मुख्तसर में किया है, दर हकीकत वो लामहदूद हैं। इस बाब में कुछ ही शौकतों को जाहिर किया गया है, क्योंकि अगले ही बाब में अर्जुन इन सब को देखना चाहता है, क्योंकि बदी ही दीदार से ही शौकतें समझ में आती हैं। अंदाज फिक्र को समझने के लिए इसी के अंदर से थोड़ा इजहार किया गया।
यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्।
जो जो भी सर्वतों वाली मुनव्वर और ताकत वाली चीजें हैं, उन उनको तू मेरे जलाल की बरकत के एक थोड़े से हिस्से से पैदा होने वाली हैं, ऐसा जान।
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्।
क्वाह अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या मतलब है? मैं इस तमाम दुनिया को बहुत थोड़ा सा अक्स करके मौजूद हूं। मजकूरा बाला शौकतों के बयान का मतलब यह नहीं है कि आप या अर्जुन इन सभी चीजों की परस्तिश करने लगें, बल्कि श्री कृष्ण का मफहूम सिर्फ इतना ही है कि इन सारी समतों से अकीदत को समेटकर महज उस लाफानी माबूद में लगा दें, इतने से ही उनका फर्ज पूरा हो जाता है। मगज सुखन निष्कर्ष। इस बाब में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं तुझे फिर नसीहत दूंगा, क्योंकि तू मेरा बेहद महबूब है। पहले बता चुके हैं, फिर भी बताने जा रहे हैं, क्योंकि मंजिले मकसूद पर पहुंचने तक मुर्शिद से ही नसीहत लेने की जरूरत रहती है। मेरे जाहिर होने को ना देवता और ना वली हजरात ही जानते हैं, क्योंकि मैं उनकी भी इब्तदाई वजह हूं, क्योंकि गैर मरई हालत के बाद की आलमगीर हालत को वही जानता है जो उस दौर से गुजर चुका है, जो मुझ ला पैदाइश ला मुतनाही और तमाम अवालिम के अजीम खुदा को बदी ही दीदार के साथ जानता है, वही आलिम है। अक्ल, इल्म, समझदारी, نفس کشی، من پر قابو، صبر، ریاضت، صدقہ اور شہرت کے تصورات یعنی روحانی دولت کی مذکورہ نشانیاں میری دین ہے۔ ہفت اورنگ یعنی جوک کے ساتھ کردار، اس سے بھی پہلے ہونے والے اس مناسبت سے باطنی چار حصے یعنی من، عقل، طبیعت اور غرور، اور ان کے مطابق من جو از خود پیدا ہے، خود تخلیق کار ہے، یہ سب مجھ میں جذب، لگاؤ اور عقیدت رکھنے والے ہیں۔ ان کی ساری ریایاں ہیں، یہ سب مجھ سے ہی پیدا ہیں، یعنی ریاضتی خصائل میرے ہی خلق ہیں۔ ان کی پیدائش خود سے نہیں، مرشد سے ہوتی ہے، جو مذکورہ بالا میری شوکتوں کو، مجسم کو جان لیتا ہے، وہ بلا شبہ مجھ میں یکتائی کی احساس سے داخل ہونے لائق ہے۔ ارجن، میں ہی سب کی پیدائش کی وجہ ہوں، جو پوری عقیدت کے ساتھ ایسی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں، وہ لا شریک خلوص کے ساتھ میری فکر کرتے ہیں، مسلسل مجھ میں من، عقل اور جی جان سے لگنے والے ہوتے ہیں، آپس میں میری خصوصیات کی فکر اور مجھ میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ ان مسلسل مجھ سے جڑے ہوئے انسانوں کو میں جوک سے نسبت دلانے والی عقل عطا کرتا ہوں، یہ بھی میرا کرم ہے۔ کس طرح عقلی جوک دیتے ہیں؟ تو ارجن، آتم بھاوستھ، خود کفیل کی ان روح میں مستحد ہو کر تیار ہو جاتا ہوں، اور ان کے من میں ناسمجھی سے پیدا ہوئے اندھیرے کو علم کے چراغ سے ختم کرتا ہوں۔ ارجن نے سوال کھڑا کیا کہ بندہ پرور، آپ قدوس، ابدی، ماورائی، لامتناہی اور سب جگہ جلوہ گر ہیں، ایسا ولی حضرات کہتے ہیں، اور موجودہ وقت حال میں عارف ملکوت یعنی دیو رشی، نارد، دیول، ویاس اور آپ بھی وہی کہتے ہیں۔ یہی حقیقت بھی ہے کہ آپ کو نہ دیوتا جانتے ہیں اور نہ دانو، خود آپ اپنے بارے میں جسے باخبر کر دیں وہی جان پاتا ہے آپ ہی اپنی شوکتوں کا بیان کرنے میں قادر ہیں۔ لہذا مالک مخلوقات، آپ ہی اپنی شوکتوں کا بیان تفصیل کے ساتھ کیجئے، منزل مقصود پر پہنچنے تک معبود سے سنتے رہنے کی طلب بنی رہنی چاہیے۔ آگے معبود کی چاہت کیا ہے، اسے ریاضت کش کیا جانے؟ اس پر جھوک کے مالک شری کرشن نے فردن فردن اپنی 81 شوکتوں کی نشانیوں کو مختصر میں بتایا، جن میں سے کچھ تو جوک کے وسیلے میں داخل ہونے کے ساتھ ملنے والی باطنی شوکتوں کی عکاسی ہے، اور بقیہ کچھ سماج میں مال و زر و کامیابیوں کے ساتھ پائی جانے والی شوکتوں پر روشنی ڈالی، اور آخر میں انہوں نے زور دے کر کہا، ارجن، بہت کچھ جاننے سے تیرا کیا مقصد ہے؟ اس دنیا میں جو کچھ بھی جلال اور شوکتوں سے مزین چیزیں ہیں، وہ سب میرے جلال کے ایک معمولی حصے کے طور پر موجود ہیں، در حقیقت میری شوکتیں بے انتہا ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے جوک کے مالک نے اس باب کا اختتام کیا۔ اس باب میں شری کرشن نے اپنی شوکتوں کی محض عقل سمجھ عطا کی، جس سے ارجن کی عقیدت سب طرف سے سمٹ کر ایک معبود میں لگ جائے۔ لیکن دوستو، سب کچھ سن لینے اور بال کی کھال نکال کر سمجھ لینے کے بعد بھی اس راستے پر چل کر اسے جاننا باقی ہی رہتا ہے، یہ عملی راہ ہے۔ تمام باب میں جوک کے مالک کی شوکتوں کا ہی بیان ہے۔ لہذا اوم تتسدیتی شریمد بھگوت گیتا سوپنشتسو برہم ودیایام یوگ شاستری شری کرشنا ارجن سموادے وبھوتی ورننم نام دشمودھیائے۔ اس طرح شریمد بھگوت گیتا کی تمثیل اپنیشد وہ علم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में बयान शान व शौकत नाम का 10वां बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये विभूति वर्णनम नाम दशमोध्याय। इस तरह काबिले एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गड़ानंद के जरिए लिखी श्रीमद् भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में बयान शान शौकत यानी विभूति वर्णन नाम का 10वां बाब मुकम्मल हुआ। हरिओम तत्सत्।